पृष्ठ संख्या 20। छिंग साम्राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की तुलना में प्रशासनीय ढांचे का विस्तार नहीं किया गया था। परिणाम यह हुआ कि अधिकारियों को कम वेतन में बहुत अधिक कार्य करना पड़ता था तथा उच्च अधिकारी अपने कर्तव्यों को निम्न अधिकारियों पर थोप देते थे, जिसके कारण अधिकारी तंत्र के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार फैल चुका था। व्यवहारिक रूप से जो लोग उच्च पद पर आसीन होते थे वे अधिकाधिक धन अर्जित करने की चेष्टा करते थे, जिससे भ्रष्टाचार का विस्तार होता चला गया। वैसे भी कार्य के बढ़ जाने पर अधिकारी केवल किताब के अनुसार शासन रूलिंग बाय द बुक करते थे, जिसमें कार्य का संचालन बिना किसी समस्या का समाधान किए हुए किया जाता था। मांचू शासकों द्वारा राजनीतिक सत्ता का बहुत अधिक केंद्रीयकरण किए जाने से किसी एक शासक के लिए सभी विभागों पर नियंत्रण स्थापित करना असंभव हो गया, जिससे ढीली व्यवस्था और लाल फीताशाही में वृद्धि हुई। परीक्षा प्रणाली न केवल अव्यवहारिक नीति पर आधारित थी, बल्कि उसका लक्ष्य सीमित था। यह मुक्त विचारों के विकास में अवरोधक थी और रूढ़िवादिता को जन्म देती थी तथा कन्फ्यूशन विचारों को अधिक महत्ता प्रदान करके वैज्ञानिक विचारों को दबा देती थी। चूंकि सभी परीक्षा को पास नहीं कर पाते थे, इसलिए बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ती चली गई। सरकार की नीतियों से असंतोष ने जब विद्रोहों को जन्म दिया तो इस विचारधारा ने बौद्धिक विकास को आधार प्रदान किया। लगभग एक शताब्दी तक शांति कायम रहने से छिंग सेना तथा उसकी राजकीय फौज का पूरा उपयोग न किए जाने से सैनिकों में अफीम की लत पड़ने लगी थी। सैन्य अधिकारियों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए मांचू शासकों ने एक जटिल सैन्य प्रणाली का विकास किया था, जिसमें अधिकारी के पास पूरी टुकड़ी को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में आंतरिक कमजोरी तथा अनुशासनहीनता पैदा होने लगी थी। वैसे भी चीन की सैनिक शक्ति पश्चिमी साम्राज्यवादी सैन्य चुनौती का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि तकनीकी रूप से वह अभी काफी पीछे थी। कृषक विद्रोह तथा हर तरफ फैले भ्रष्टाचार के कारण राजकीय कोष में जमा होने वाले करों की मात्रा में कटौती हुई। चीन में भूमि कर वस्तु के आधार पर लगाया जाता था, किंतु कृषकों के नकद तांबे के सिक्कों में कर अदा करना पड़ता था। तांबे के सिक्कों का अनुपात रजत सिक्कों के आधार पर तय किया जाता था। प्रांतीय प्रशासकीय अधिकारी रजत तांबे की विनिमय दर को अपने लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताते थे तथा अंतर को स्वयं हड़प जाते थे। पृष्ठ संख्या 22। दूसरी ओर सरकार के पास कर की रकम निश्चित की गई संख्या की रकम से कम ही पहुंचती थी। लगातार भ्रष्टाचार के व्याप्त होने से सरकारी स्रोतों की मात्रा में भारी कटौती हुई, जिसमें प्रशासन कमजोर तथा ढीला पड़ता चला गया। वैसे भी 19वीं शताब्दी में रजत व तांबे के खनन में कटौती होने के कारण इन दोनों सिक्कों की कमी हुई, जो वित्तीय संकट का कारण बने। 1820 के दशक के बाद रजत सिक्कों का उपयोग अधिकतर गैर कानूनी अफीम व्यापार के लिए किया जाने लगा, जिसकी वजह से मुद्रा की कीमत गिरती चली गई। वित्तीय तथा प्रशासकीय संकटों के कारण सरकार के पास युद्ध और विद्रोहों का सामना करने की शक्ति तथा क्षमता नहीं रह गई थी। ऐसी स्थिति में पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रवेश और युद्ध 19वीं शताब्दी के संकट का कारण बन गए। अफीम की लत, चांदी की निकासी, विदेशी जहाजरानियों का चीन में स्थापित होना, कपास मिल, रेल मार्ग का विकास, टेलीग्राफ तथा संचार के नए प्रबंधों के आने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संकट की शुरुआत हुई। शहरों में साम्राज्यवादी शक्तियों के स्थापित होने के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ तथा अंत में चीन में फिर से कृषकों द्वारा छिंग शासक के विरुद्ध विद्रोह शुरू किए गए, जिससे इतिहासकार 19वीं शताब्दी का संकट कहते हैं।